कीर्तनम अद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। अर्जुन जी पूछो कि भगवान गुना तीतरा लक्षण काई वे और मारा आचरण कैसा वे और ऐसो कई उपाय है जिको करने से गुणातीत हो जावे और मनुष्य गुणों ऊपर उठ जावे संसार से ऊपर उठ जावे और संसार गुणारूई कार्य है प्रकृति से तीनों गुण पैदा हुआ और ए तीनों गुण ही संसार में भरिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जका में तीनों गुण नहीं वे तो ए तीनों गुण ही इन जीव ने शरीर में बांधे तो आउ किया सूटे मनुष्य आउ ऊपर किया उठे जना भगवान है पहला तो गुणातीतरा लक्षण बताया और फिर आचरण बताया और फिर उपाय बतायो कि कोई अगर अव्यभिचारी भक्ति करे तो वो आ गुणा से ऊपर उठ जावे और बिन्ने ब्रह्म की प्राप्ति हो जावे। ज्ञान रे रास्ते चले वे इन संसार ने त्याज्य समझ करके इसो अलग हो जावे वे ब्रह्म में स्थित हो जावे तो एक तो उपाय आरो ओ है ही कि जका इन रास्ते चलिया है जका गुणातीत हो गया है और वे आचरण करे है बारे अनुसार चाले तो वे भी गुणातीत हो जावे बाने आदर्श मान करके चाले कि ए महापुरुष ई रस्ते चलिया है तो आपा भी यू करा तो वे भी के गुणातीत हो जावे। और अगर कोई भगवान रो शरणो ले लेवे भगवान री भक्ति करे अनन्य भाव सु तो वे भी के गुणातीत हो जावे और माने भी ब्रह्म री प्राप्ति हो जावे कि भक्ति करे जकाने तो भगवान री प्राप्ति हो जावे है और माने के ब्रह्म री प्राप्ति हो जावे कि गुणातीत उन्नाला एक तो चावे ब्रह्म री प्राप्ति है और दूसरी बात है कि ब्रह्म कोई भगवान सु न्यारा कौन है ब्रह्म रा आधार भगवान ही है और ए जो बारी प्राप्ति वास्ते जो उपाय बताया जावे है बारी प्राप्ति वास्ते है जो सनातन धर्म रो पालन करियो जावे बीरो आधार भी भगवान ही है और बासु जो प्राप्ति वे अखंड आनंद री जो प्राप्ति वे ती प्राप्ति रा आधार भी भगवान ही है मूल में भगवान ही है तो बाने भी प्राप्ति बारी वे। अब भक्ति करे तो एक तो भक्ति करने वालो हुयो और एक भगवान हुआ और एक भक्ति हुई। भक्ति करे जना इस संसार से तीनों गुण वाले संसार से छूट करके वो परमात्मा ने प्राप्त हो जावे, तो एक तो या परमात्मा और एक परमात्मा ने करने वाला हुयो और एक जगह रो त्याग करियो वो जगत हुयो। आ तीनों रो वर्णन भगवान पंद्रहवें अध्याय में समझा कर कहवे। भगवान कहवे कि वो संसार है नी, वो एक पीपल रे वृक्ष रे समान है। पीपल रो वृक्ष है नी, वो उगे फिर उगे जना बीरे बड़ो वे जना बीरे पेड़ रे कई डालियां लाग जावे और जड़ा भी वे, और कई पीपल रे जटा वे जू बढ़ रे जटा लागे नी, ऊपर डाली रे जड़ लागे बाद नीचे धरती में घट जावे जना एक बड़ और हो जावे, तीसरी यू शाखा लागे तो बाजी हो जावे, ऐसा पीपल भी वे जटा वाला पीपल। तो कह पीपल रो पेड़ वे जके रे जड़ा तो नीचे वे और शाखा ऊपर वे, डालियां वे मारे पत्ता वे कूपना वे, तो बीरा तो के वो मूल नीचे वे जड़ा, लेकिन वो संसार वालो वो वृक्ष है नी, तीर जड़ा ऊपर है के मूल ऊपर है। ऊपर क्या है कि सबसे ऊपर परमात्मा है और परमात्मा से ही वो संसार पैदा हुयो है, तो जटू पैदा हुए जड़ा बटी हुए जो धरती से पैदा हुए, तो धरती नीचे वृक्ष ऊपर जाना मूल भी जटे आधार है बटी नहीं मूल है। धरती नीचे रहेगी जन बीरी जड़ा नीचे है और परमात्मा है ऊपर, परमात्मा ही संसार रो आधार है, तो इरी जड़ा ऊपर है और शाखा नीचे है। परमात्मा स्वी ब्रह्मा जी और जगत पैदा हुई हो जना सबसे ऊंचा परमात्मा, तो के इरी जड़ा ऊपर है। अब असुओं पेड़ वह जना तो सावड़ दी के पण उल्टो है जन इमें दिखे भी उल्टो ही है, एक प्रकार इमें हरेक समझे को नहीं, कोई से समझे जका वेद रा ज्ञाता है जका इरा वेद पत्ता कही आगे जके पीपल रहे पत्ता नहीं वे तो मेरी शोभा को नहीं वे, और पत्ता वे तो शोभा बढ़ जावे। इन वेद वाणी में जो सकाम कर्मारे अनुष्ठान री बात आई है और मेरी प्रशंसा करी गई है कि बहुत बढ़िया हो जावे, तो वे इरा पत्ता है और इरी शाखा ऊपर नीचे सब लोक में फैलोड़ी है, धरती लोक में अर्थ ऊपर स्वर्ग आदि लोक में अर्थ और नीचे भी पाताल आदि नरक आदि लोक में भी, कि जड़ा का ही है कि ओ जो जीव तादात्म्य कर ले नहीं शरीर रे साथ में के मैं हूं, ओ पदार्थ रे साथ में तादात्म्य कर ले वे, आसक्ति कर ले वे, ममता कर ले वे के मारी है चीजा वस्तु व्यक्ति, तो ऐ के जड़ा है। ओ जीव आमें आसक्ति करके संसार में आसक्त होकर के इस संसार में ही बंदीड़ो है। ये पीपल रे ये पेड़ में ही इमई और जीव इमई है के ये पीपल रे पेड़ में ही और आसक्ति कर ली ममता कर ली अहंता कर ली कि मैं ही हूं, और संसार मारो है शरीर मैं हूं और संसार मारो है। इयों करके ओ जीव ई जगत में फंस जोड़ो है, जगत में बंद जोड़ो है, और मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक पर जब मनुष्य शरीर मिले भी टाइम जो ओ कर्म करे बा कर्मा रे अनुसार ओ कणई तो ऊपर जावे है और कणई नीचे जावे। सोखा कर्म करे जना तो ऊपर चलियो जावे स्वर्ग आदि ऊंचे लोका में, और बुरा कर्म करे जना नीचे चलियो जावे नरक आदि लोका में और 84 लाख जूनिया में। यूं ओ जीव इस संसार में बंदियोड़ो होने के कारण इस संसार में फंस जोड़ो है, और ए कर्म लागू मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में जो ओ जीव कर्म करे बीरो फल दूसरी दुनिया में भुगतियो जावे, दूसरी दुनिया में जो कर्म करिया जावे वे बीरे लागू कोनी वे। जो अब गाय है, भैंस है, सिंह है, ए कोई कर्म करे तो आने पाप पुन थोड़ी लगे। अब बैल है, भैंसा है, घोड़ा है, कई सेवा का काम कर दे, गदोई दिन भर ढोवे तो वो भी सेवा रो काम कर देवे, लेकिन बिन कोई पुन थोड़ी वे यही ए पाप भी कर देवे। सिंह कोई जानवर ने मार करके खा जावे तो बिन पाप थोड़ी वे, क्यों नहीं वे कि वे अज्ञान सो मोहित जुनिया है, वे भोग जुनिया है। आज जुनिया में तो पहला रे कर्मा रो भोग वे है, नया कर्म कोनी वे, नया कर्म करने रो अने विवेक कोनी। ओ विवेक मनुष्य शरीर में है, इन वास्ते मनुष्य अगर कहीं ने दुख भी देवे है या दुख री भावना भी रखे कि ओ दुखी हुजवे ऐसी भावना रखे तो भी इन पाप है, और पुण्य करे तो इन पुण्य वे। तो ए पाप और पुण्य ई मनुष्य शरीर में ई मनुष्य लोक में लागू है, और आरे अनुसार ही मनुष्य लोक में करियोड़े कर्मारो फली सब लोका में भुगतियो जावे, सब दुनिया में भुगतियो जावे। और यहाँ ओ जीव इस संसार में बन जुड़ो है के। तो के इस संसार छूटे किया अब के ओ जो रूप बतायो नी संसार रो, ओ ऐसो विचार करिया बाद में जब इरो असली ज्ञान हो जावे तो ऐसो मिले कोनी। जब बंधन से छूट जावे और संसार ज्ञान हो जावे तो अभी जो वर्णन करियो और जो दूसरे अज्ञानिया ने और संसार दिखे है ऐसो बाद में उपलब्ध कोनी है, और वो अविनाशी है के? और संसार अविनाशी और तो बने और बिगड़े है नी, संसार पैदा वेर फिर ब्रह्मा जी ने पैदा करे, विष्णु भगवान इरो पालन करे, फिर शिव जी पास समेट ले वेर, तो संसार तो पैदा वेर नष्ट वे है नी। तो अविनाशी किया है कि परवाह रूप से अविनाशी अनादि है, और कद पैदा हुयो है और कद नष्ट हुसी के महा सर्ग में पैदा हुई और महाप्रलय में नष्ट हो जैसी, लेकिन ओ क्रम कद से चालू हुयो के रुठाई को अनादि है, सदा से चलतो आयो है, और के ओ कद तई चाल सी इरो भी कोई सांदो को नहीं, सदा ही ओ यही चाल सी। तो ओ ऐसो इरो क्रम है उत्पत्ति और विनाश वालो, ओ बदलने वालो, तो ओ अविनाशी है। ऐसे अविनाशी संसार बंधन में ओ जीव बंधियोड़ो है तो छूटे किया कि इमें जो कामना ममता आसक्ति कर ली तो बात छोड़ दे तो ओ जीव छूट जावे। और जो संसार वृक्ष है इन्हें किया काटे कि असंग शस्त्र से काटे, असंग यानी आसक्ति रहित आसक्ति छोड़ देवे, संसार सु शरीर संसार सु सुख लेने री इच्छा छोड़ देवे, सुख भोग छोड़ देवे, और परमात्मा री खोज करे तो परमात्मा री प्राप्ति हो जावे, संसार बंधन छूट जावे। कि आ खोज करनी चाहिए के क्या करे के भी भगवान री शरण हो जाओ। जके भगवान सु जका भगवान ई संसार री रचना करी, जका भगवान सु ओ संसार बनियो और इतो ओ विस्तार को प्राप्त हुयो, बा परमात्मा री ही मैं शरण हूँ। इयो भगवान रे शरण हो जावे तो ई संसार बंधन सु छूट जावे और फिर भगवान री प्राप्ति हो जावे। भगवान री प्राप्ति हो जावे जना कहीं वे कबीरा ए सब अहंता ममता अशक्ति आदि ए सब दोष मिट जावे, मेरी मोह ममता मिट जावे। और जो अशक्ति वालो दोष है जकेरे कारण और जीव संसार में बंदियोड़ो है और ऊंची नीची दुनिया में इन्हें जन्म लेनो पड़े है, तो वो आसक्ति रूप दोष भी मिट जावे, वह तो फिर परमात्मा में ही स्थित हो जावे। ऐसा वो परमात्मा रो स्वरूप है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा धुंदेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन् च मूढ़ा पदम अत्यम तत्। वह सुख दुख काले ही द्वंद मोह से छूट जावे और उस अव्यय परम पद ने प्राप्त हुए। अव्यय जका कदई खर्च को नहीं वे, अविनाशी है, बा में कोई किंचित भी बदलाव को नहीं वे। संसार में तो प्रतिक्षण बदलाव हो रही है और तो प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, पर वो परमात्मा वो धाम है वो कदई नष्ट को नहीं वे। है जैसो को जैसो ही रहे, मेरी प्राप्ति हो जावे कि ऐसो कहीं वो धाम है। वो धाम तो विलक्षण है, बट तो है जो सूर्य चंद्रमा अग्नि है नी अभी ने प्रकाशित को नहीं कर सके। मन बुद्धि आदि अभी बट पहुंचे को नहीं। सूर्य देवता है आंखिया रा, तो आंखिया तो देख ही को नहीं सके, आंखिया रा देवता भी को नहीं देख सके अभी परम धाम ने। सूर्य रो प्रकाश भी बट को नहीं जावे। क्यों नहीं जावे कि सूर्य में प्रकाश आयो बट भी है, इतो सूर्य रो प्रकाश थोड़ी जो भी परम धाम ने प्रकाशित कर दे, पैदा ही बट हुई है। इन कोई वर्णन करके बता दे भी परम धाम ने, तो बाणी भी बट पहुंचे कोनी, बाणी रे देवता अग्नि भी कोनी पहुंचे, अग्नि रो प्रकाश भी बट कोनी पहुंचे। परम धाम में जो प्रकाश है इस परम धाम ने प्रकाशित, तो अग्नि भी कोनी कर सके, सूर्य भी कोनी कर सके, चंद्रमा भी कोनी कर सके। चंद्रमा है नी मन का देवता, तो मन भी बट पहुंच कोनी पाओ। बुद्धि रा देवता ब्रह्म जी है, तो ब्रह्म लोक भी पुनरावृत्ति है। तो ए मन र बुद्धि र आंखिया र वाणी र कोई भी परम धाम ने प्रकाशित कोनी कर सके, बता कोनी सके, कोई कहकर कोनी बता सके, कोई मन सुबह ने सोच कोनी सके, बुद्धि सु यूं कोनी पकड़ सके, ऐसो वो परम धाम है। आम में जो शक्ति है बटवी आ सकती है। आगे भगवान बताए और बारहवें श्लोक में यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयति अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। कि जो तेज सूर्य में आयोड़ो है भी परम धाम से आयो परमात्मा से, जब को सूर्य सारे संसार ने प्रकाशित कर दियो कि तो तेज है, वो तेज भगवान से आयो है। पर जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, भगवान के वो तेज मारो ही है। यूं समझो स्वामी जी महाराज कहे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पंद्रहवें अध्याय रा विभाग कर दिया पांच पांच श्लोक रा। पांच श्लोक में ये संसार रो वर्णन हुयो और पांच श्लोक में आगे जीव रो वर्णन हुयो, पांच श्लोक में परमात्मा रो वर्णन हुयो, जते में ओ छठो श्लोक अट पहला दे दियो। ओ श्लोक आगे जब परमात्मा रो वर्णन हुसी यदादित्य गतम तेजो आदि बट लगा ले सी जन पांच पांच श्लोक हो जैसे, फिर अग पंद्रहवें श्लोक आगे जो प्रकरण है वो तीनारोई बिलोई प्रकरण है। क्यों पहला पांच लोक जीव कर, पांच जगत कर, पांच परमात्मा रा। तो क्या जीव कहीं है तो भगवान के ओ जीव मारो ही स्वरूप है, मारो ही अंश है, ममे वंश हो भगवान रो अंश है, भगवान रे जैसो ही है, भगवान री और जीवरी जाति एक ही है, दोनों अविनाशी है, हम कोई फर्क को नहीं। तो के फर्क नहीं है जन फिर परमात्मा रे जीव रे दो किया हुआ कि और प्रकृति रे अंश ने पकड़ लियो इन जीव जन ओ जीव बन गयो, अगर ओ छोड़ दे तो पाछो परमात्मा रो स्वरूप ही है। प्रकृति रे अंश ने क्या पकड़ियो कि प्रकृति रा अंश है नहीं, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, आने पकड़ लियो। पांच इंद्रिया और पांच विषय रहो तो अटवर्ण नहीं कर दियो, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चे रसनम घ्राणम एव चे, हमारी जो इंद्रियां है श्रोत्र यानी कान और कान रो विषय शब्द और चक्षु आंख, आंख रो विषय रूप और स्पर्श, स्पर्श रो त्वचा रो विषय स्पर्श और रसना जीभ, जीभ रो विषय रस और घ्राण ओ नाक, नाक रो विषय गंध। तो आरे सारे सुन ओ जीव विषयों रो उपभोग करे, जके शरीर ने छोड़े और जके शरीर ने ओ प्राप्त हुए तो इन्हें के ज्ञानी जना तो जाने है और मूर्ख को नहीं जाने। मूर्ख लोग तो इस शरीर में रहते हुए इस जीव ने को नहीं जाने, इस शरीर ने जब जीव छोड़े जना इस शरीर में अने दस इंद्रियां मन बुद्धि और पांच प्राण ने लेकर के दूसरे शरीर में चलियो जावे, सूक्ष्म शरीर साथ में जावे और स्थूल शरीर अति छोड़ देवे, फिर दूसरो स्थूल शरीर प्राप्त हो जावे। क्या जो हवा चले जना एक जगरी गंध ने बटो दूसरी जगह ले जावे, यही ओ जीव ई स्थूल शरीर ने छोड़े जना आ मन बुद्धि आ इंद्रिया ने साथ में ले जावे, प्राणा ने भी साथ में ले जावे और दूसरे शरीर में जातो रहे। तो आ बाता ने के मूड मनुष्य को नहीं जाने, जो यत्न करे वे इन्हें समझे, और मूड मनुष्य तो कहे यत्न करे तो भी को नहीं जाने, मेरो अंतःकरण अशुद्ध है, वो संसार रा भोग पदार्थ आने महत्व देवे, इस संसार री ही वो प्राप्ति इन्हें महत्व देवे है, इन वास्ते भी रहे मलिनता है, भी मलिनता रे कारण वो यत्न करे जाननो चावे तो भी जान को नहीं पावे, और जकारे इस संसार रो महत्व नहीं है, भोग और संग्रह रो महत्व नहीं है, वे इन्हें छोड़ करके परमात्मा री प्राप्ति करना चावे है, बाने जाननो चावे है, बाने को ज्ञान हो जावे को जीव काई है, परमात्मा काई है, संसार काई है, और प्राप्ति हो जावे जाना तो फिर अभी बताया कि परम धाम में चले जाओ, जटे सूर्य चंद्रमा अग्नि भी प्रकाशित को नहीं कर सके बिने, ये परम धाम में चले जाओ। वे परमात्मा कोई यूं कहने के परम धाम तो बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है, अब बात भी सही है, लेकिन वो परम धाम ऐसा है कि अटे भी है, कि मृत्यु लोक में भी सर्वव्यापी है भगवान, भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान रो धाम भी ज्यादा हुई सी बोतो, एक मनुष्य ही तो बड़ो वे तो मनुष्य बड़ो तो भी रो घर वे, और वो जगह नगर में रहे वो नगर तो और भी बड़ो वे, देश भी बड़ो वे, तो यो भगवान जगह धाम में रहे है तो वो धाम की तो बड़ो होना चाहिए, भगवान तो बहुत बड़ा है, सब जगह अटे भी है, तो धाम भी अटे माननी पड़ती कि अट किया है कि भगवान सगले संसार में व्याप्त है। भगवान कहे कि मैं ही धरती में प्रवेश करके सगले प्राणियों ने धारण करूं, कि भगवान ये धरती रे मई ने है लेकिन इन धरती को नहीं जाने, आप को नहीं जाना नहीं, इन शरीर मई ने ओ जीव है जकन जाना को नहीं आप, और सब काम करे हो दूसरे को नहीं, यो धरती में भगवान रहे सब काम करे धरती को नहीं जाने, तो दूसरा प्राणी तो कहीं जाने बेचारा। यो सारी सृष्टि में भगवान है, गामा विशेष भूतानी धारिया अहम ओज सा अपनी शक्ति से उनको धारण करता हूं, और सगली औषधिया ने रस रूप चंद्रमा होकर के पुष्ट करूं मैं। तो यूं भगवान सारे संसार में व्याप्त है। अब बतावे है कि जो धरती में भगवान प्रवेश करके धारण करे नहीं, तो बहुत बड़ी धरती है। इन्यों ही के छोटा छोटा जो शरीर है मैं भी भगवान के मैं रह करके अन्न धारण करूं, कि मनुष्य जो भोजन करे नहीं, चार तरह का भोजन करे मनुष्य के, चार तरह का भोजन बताया, एक तो चबा करके खावे और एक चूस करके खावे आम आदि, और एक चाट करके खावे चटनी आदि, और एक कहीं बताए भोज्य पेय चोष्य और लेह्य। भोज्य पदार्थ तो वो है जो दांतों से चबा कर खावे, पेय वो है जो पिया जाता है, जो अन्न निगला जाता है जैसे खिचड़ी हलवा दूध रस आदि, और चोष्य वो है दांतों से चबा कर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है, और लेह्य वो है जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है जैसे चटनी आदि शहद आदि। तो चार तरह का भोजन करे ओ मनुष्य, तो भगवान कहे कि वो पचऊ मैं हूं। प्रत्येक प्राणी रे शरीर में भगवान रह करके भोजन पचावे, पचाऊ नो काम भगवान करे है, तो भोजन करने रो काम कौन करे, तो जीव करे, जीता जीव है वह भोजन करे कि मैं भोजन करूं, यूं करी तो जीव बंदे। अगर और समझ ले कि जब पचाऊ नो काम भगवान कर रहा है, तो चबाऊ नो काम और ओ काम भगवान को नहीं कर रहा क्या, क्या तो करे तो भगवान ही, भगवान री शक्ति हुई वो वह नहीं, तो भगवान अगर शक्ति नहीं देवे तो कहीं और चबा सके, कहीं पी सके, कहीं चाट सके, लेकिन भोजन मैं करूं अटे तो मैं करूं और लगा देवे बटे के चबावे पचावे जाना कि मैं पचाऊ, यूं थोड़ी है वो तो पचे है, यूं ही समझ ले कि भोजन भी गुरियो है, तो वो ज्ञान मार्ग वालो रस्तो सिद्ध जावे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, खाता हुआ भी खाता नहीं हूं, और पीता हुआ भी पीता नहीं हूं, और सोता हुआ भी यो कुछ नहीं करता हूं, पर सब भगवान करे है, तो भक्ति उज्जव है कि भगवान ही भोजन कर रहा है। जगह भगवान रा भगत वे नहीं, वे भगवान रो प्रसाद लेवे, भोजन बने वे पहले ही कह दे, कोई तो पूछ ले कि आज ठाकुर जी कहीं बन सी, कि आज हलवो बना से आ रहा, कोई कह अब बना से आ रही हूं, फिर भगवान रे भोजन बनावे रसोई बने, फिर भगवान रे भोग लगा देवे कि भगवान जीम लिया, अब बच्चों प्रसाद आपा जीम लिया, तो वो प्रसाद पावे जना वो तो खुद पालियो के स्वाद लेवे है, मैं करूं जना तो ठीक है भी रोगी वो तो भोजन, लेकिन स्वाद दृष्टि नहीं वे तो वो भी भगवान ही करे। भगवान कहे के मैं भगतरी जीव सु रस स्वाद लेऊं, अब आप भोग लगावा भगवान रे थाली में परोस करके भोग लगायो क्या भगवान ने जिम्मा दिया पण भी मैं तो कम हुई को नहीं एक कण को ही तो भगवान किया जिम्मे कि भगवान दृष्टि में जिम्मे कि भोजन रे ऊपर दृष्टि पड़ गई भगवान री बस भगवान भोजन कर ले दृष्टि में भोजन किया हो जाए भगवान कर ले। अब भोजन में स्वाद कैसो हो तो वो स्वाद के मैं भगतरी जीभ सुन ले रस मीठो हो ओ खाटो हो ओ भोजन ऐसो है ओ रस के भगतरी जीभ सुन ले। तो भगतरे रूप में भगवान ही भोजन करे अगर कोई भी यूं समझ ले तो वो भी भगत हो जाए ये तो सौरो काम है। तो भगवान के है प्रत्येक प्राणी रे शरीर में रह करके बिरु खायोड़ अन्न में पचाऊ और जो मनुष्य सोचे है मनुष्य ने जो ज्ञान वह है याद अवैर ए बाता भी भगवान के मारे सुई वे मनुष्य देखे कि मैं समझू मारे में ही बुद्धि है और संदेह मैं मिटा दियो ये दुविधा हो रही ही मैं सोचियो जना समझ में आ गई मारे तो आ समझ कौन देवे भगवान देवे तो सोचने वाला भी भगवान ही हुआ ज्ञान रूप में भी भगवान ही हुआ कि ओ भोजन चोको कोनी ओ चोको है तो मैं निर्णय करियो यू नहीं भगवान निर्णय करे अब बुद्धि भगवान दी तो यू एक बुद्धि में भी भगवान है बुद्धि स्वरूप भी भगवान है ज्ञान स्वरूप भगवान ही है वेदारा जानने वाला भी भगवान ही है और वेद कन जनावे है वेद वर्णन करे है समझावे है कहीं समझावे है कि भगवान ने समझावे कि भगवान कहीं चीज है और समझने जोगी बाई चीज है कहीं कि परमात्मा सगला वेदारो समझाने रो तात्पर्य परमात्मा ने समझाना है और बाने समझना सही है कि वेदांत ने बनाने वालों मैं ही हूं और इन जानने वालों भी के मैं ही हूं। तो यूं पहला तो संसार रो वर्णन करियो फिर जीव को और फिर परमात्मा रो वर्णन कर दियो अब दोना रो तीनारो अब सत्य ही कहे भगवान कि इस संसार में दो पुरुष है एक तो अक्षर और एक अक्षर अक्षर तो वो है जको अविनाशी है कदी नाश को नहीं वे और अक्षर वो है जकर नाश वे या यूं कहता कि एक तो विनाशी और एक अविनाशी दूसरे शब्द में यूं कहता कि एक जगत और एक जीव ये दो पुरुष है अन दोनों ने पुरुष बताया भगवान कटे जीव ने पुरुष बतायो कटे जीव ने स्त्री बतायो कटे नपुंसक बतायो यूं ही प्रकृति ने कटे स्त्री कटे पुरुष कटे नपुंसक यूं परमात्मा रे वास्ते भी आयो फिर तात्पर्य ओ है कि परमात्मा न तो स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है यूं यो जीव न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है यूं ही संसार है तो आन दोनों ने पुरुष बताया सातवें अध्याय में तो आन दोनों ने प्रकृति बताया स्त्री बताया अटे दोनों ने पुरुष बता दिया बटे बताए नहीं परा प्रकृति और अपरा प्रकृति परा प्रकृति तो हुई जीव और अपरा प्रकृति हुई जगत अटे दो पुरुष बताया एक तो विनाशी और एक अविनाशी कि विनाशी तो और जगत और अविनाशी और जीव पण एक तीसरो उत्तम पुरुष अलग ही है के वो तो ए बताई दिया तीसरो कौन है कि उत्तम है पुरुष वस्तु अन्य परमात्मे चुदाहिते परमात्मा ऐसा कहा जाता है फिर नाम है परमात्मा वो कैसा है कि तीनों लोका में वो प्रवेश करके सगला ने धारण करे जीव जगत और परमात्मा तीन हो गया के जीव और परमात्मा तो क्या स्वरूप तो एक ही है नहीं, फिर दो किया हुआ। भगवान कहे कि ई जगत सु तो मैं अतीत हूं परिया हूं, और जगत तो जड़ है, और भगवान चेतन है। आप बात तो ठीक है, पण वो जीव भी तो चेतन है। तो भगवान कहे ई जीव सु मैं उत्तम हूं, अक्षर सु तो अतीत हूं और अक्षर सु भी उत्तम हूं। इन वास्ते लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम सु प्रसिद्ध हूं। दो पुरुष है नी, जीव और जगत, आसु उत्तम पुरुष है परमात्मा, अन्य कहे पुरुषोत्तम। कह अक्षर सु उत्तम किया है परमात्मा, जीव और परमात्मा की जाति एक ही है, फिर भगवान उत्तम क्यों है? कि यद्यपि परमात्मा का अंश होने से, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा अक्षर की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये हैं। पहला, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा अक्षर जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। एक तो कारण बताइयो कि वो जीव है, वो जीव की प्रकृति के साथ में संबंध मान लेवे, इन वास्ते वो जीव है, परमात्मा संबंध को नहीं माने, माने ए तो अलग है। दूसरो कारण है कि वो जीव की प्रकृति रे गुण में मोहित हो जावे, पर परमात्मा मोहित को नहीं वे, वो भेद है। तो एक कारण तो वो बतायो। दूसरो कारण, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं। गीता 4वें अध्याय का 6वां श्लोक। और जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान अवतार लेवे, जन्म लेवे, जना तो इन प्रकृति ने अधीन करके अवतार लेवे, प्रकृति भगवान रे वश में रहे, पण वो जीव जन्म लेवे, जना प्रकृति इर जीव रे वश में कोनी रहे, जीव ही प्रकृति रे वश में रहे, तो वो भेद है। तीसरो कारण बतायो कि परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। गीता 4वें अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। और जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। गीता 4वें अध्याय का 18वां और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। परमात्मा तो निर्लिप्त है सदैव ही, और जीव और निर्लिप्त कोनी, इन्हें निर्लिप्त होने वास्ते साधन करनो पड़े है। साधन करिया पछे तो अभी उजेवे निर्लिप्त, पण अभी लिप्त है, तो ए भेद है। और भी है जगह, तो इन वास्ते वो जीव परमात्मा री जाति रो होने पर भी वो परमात्मा सु वो अलग हो गयो, इस संसार में वो असक्त हो गयो, ओ लिप्त हो गयो, ओ कर्ता बन गयो, भोक्ता बन गयो, इन वास्ते ओ अलग हो गयो, जन दो गिनती होगी, एक तो परमात्मा और एक जीव। यो कोई समझ लेवे नहीं तो कहे वो सर्व भी तू जावे। आ एक बात समझ ली कि दो पुरुष है, एक जगत और जीव, और परमात्मा आसु उत्तम है, ए बाता कोई समझ लेवे तो वो सर्वविद हो जावे, सगलो जान गयो वो, और फिर कि वो सब प्रकार सु मने ही बजे, वो भगवान ने भजन लग जाए। तो ऐसो ओ गोपनीय शास्त्र कहो, भगवान ने 15वें अध्याय ने शास्त्र कहो, दूसरा अध्याय ने शास्त्र को नहीं कहो, बड़ो विशेष अध्याय है। इन्हें कोई समझ ले तो वो बस बुद्धिमान हो जावे, कृतकृत्य हो जावे, ज्ञात ज्ञाते हुए हो जावे। फिर कोई समझ लो बाकी को नहीं रहे, कुछ भी करनो बाकी को नहीं रहे, सब कुछ वो कर चुके। ऐसो ये अध्याय रो मातम बतायो भगवान, ज्ञान रो भी मातम है। अब आगे भगवान 16वें अध्याय में दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति रो वर्णन कर सी। दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति सुनते ही यूं दृष्टि जावे है कि आसुरी प्रकृति तो हुई असुराली, राक्षस राक्षस लोग है नी, बारो स्वभाव हुई बिन कहवे आसुरी प्रकृति। पर दैवी प्रकृति बा है जो देवतारी प्रकृति है, देवतारो स्वभाव है, देवतारा गुण है, बा देवी प्रकृति। लेकिन ओ अर्थ को नहीं, देव नाम है परमात्मा रा, और परमात्मा रा जो गुण है, परमात्मा री जो प्रकृति है, स्वभाव है, बिन कहवे दैवी प्रकृति। देव परमात्मा, देव सु आयोड़ा है गुण, दैवी प्रकृति वाला। और असुर कौन है? असुर बे राक्षस, असुर बे नहीं, बे तो है ही। तो इनमें महाराज जी खुलासो बतायो है कि असु नाम है प्राणों का, और प्राणा में जो रमण करे वे वे असुर। प्राणा में रमण किया करे कि प्राणा में जो आसक्त है कि मारा प्राण बनिया रहे, कोई मरनो को नहीं चाहे कि मैं मरूं नहीं, और इस शरीर में ही प्राण रहे और मैं सुख भोगतो रहूं, सुख सु रहूं, और जो भाव है नी, और जो स्वभाव है नी, वो असुर स्वभाव है। असुर स्वभाव कहीं कि असुर, असुर कौन कि प्राणा में रमण करे जगह। मानो इस शरीर ने लेकर के जो जीवनो चावे नी, बारी प्रकृति है असुरी प्रकृति। और जो प्राणा ने नी चावे, मानो वे इस शरीर रे साथ में संबंध नहीं रख करके, ओ संसार और शरीर रो संबंध छोड़ करके परमात्मा की तरफ चाले, परमात्मा ने चावे, जो परमात्मा ने प्राप्त हो जावे, ऐसा जो है वे है दैवी प्रकृति। देव परमात्मा ने चाहू नाला, बा में जो गुण है वह दैवी गुण, दैवी प्रकृति रहा है। अब दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति पहला संक्षेप में तो कई जगह आ गई, पर विस्तार से भगवान ने वर्णन करने रो अब अवसर मिलियो है। पहला 7वें अध्याय में भी भगवान संकेत कर दियो कि चार प्रकार रा भगत हमारा भजन करे, और जो दुष्कृति है वह मारो भजन कोनी करे, और पुण्यात्मा है जका भक्ति करे, कई जना देवतारी भक्ति करे, स्वर्ग आदि चावे। तो बाहरी गिनती तो के आसुरी प्रकृति में ही आई है। जका पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जावे, चाहे ब्रह्मलोक में चला जावे, तो भी बाहरी गिनती आसुरी प्रकृति में आई है। देवता बन गया तो भी के असुर, कि तिया असुर कि आसुरी प्रकृति बंध नाली बताई है, और वो बंजीड़ो है, और बामे अभिमान भी वे, कामना भी वे, और आ अभिमान नाली आ है आसुरी प्रकृति। दम्भो दर्पो अभिमान अस्ते क्रोध है पारुष्यम एव छे अज्ञानम चाभी जात से पार्थ संपदम आसुरी, आसुरी प्रकृति है। स्वामी जी महाराज कहे कि पहले तो के मारे के यू एक मुश्किल पड़ी कि जका परमात्मा की तरफ चाले है, जका तो हुआ दैवी प्रकृति वाला, और जो संसार की तरफ चाले है देव या असुरी प्रकृति वाला। पण जो यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करके स्वर्ग में जावे है, मान ने किसी प्रकृति में लेवा, माने देवी प्रकृति में लेवा या असुरी प्रकृति में लेवा, तो क्या हमारे बड़ी पंचायती पड़ी। फिर क्या भाई ए दोनों 20 वाला है, यूं करके काम चलाउता। पर बाद में जब ध्यान दियो, गीता जी टीका लिखे जन पे ध्यान सुन लिखनी पड़े नहीं, तो क्या बाद में समझ में आयो कि ए सगड़ा ही असुरी प्रकृति वाला है। जका यज्ञ करे है, दान देवे है, तपस्या करे है, लेकिन बदले में चावे कहीं है कि स्वर्ग प्राप्ति चावे, कोई ब्रह्मलोक चक्री प्राप्ति चावे, और माने ब्रह्मलोक मिल जावे, इतना ऊंचा देवता बन जावे, स्वर्ग से भी ऊंचा चला जावे, वे तो ब्रह्मलोक तो कितो ऊंचो है और कितना बरसारी बटे उम्र वे, लेकिन माने भी पास आनो पड़े, मारो जन्म मरण को नहीं छूटे, वे भी इस संसार ने छोड़नो को नहीं चाहे, जनी तो पाचा आवे और सुख भोगने जावे स्वर्ग में और ब्रह्म लोक में, सुख भोगरी मारी इच्छा मिट्टी को नहीं, वे भी शरीर में रहना चाहे, प्राणा में वे भी रमण करे है, तो वे भी के असुर प्रकृति वाला ही है, असुरी प्रकृति वाला ही है, के कहने में बड़ो संकोच हुए, लेकिन अब केवल करा ता गीता जी कहे, कहत कबीर में कहता डरू, पर गुरु कहे सो मैं क्या करूं। कबीर जी कह मैं क्या तो डरू, पर गोरखनाथ जी कह करो मैं कहीं करूं वे के, और कहने में संकोच हुए कि यज्ञ दान आदि कर्म करने वाला और स्वर्ग और ब्रह्मलोक में चलिया गया जका भी कि असुर है, असुरी प्रकृति वाला है, कहने में संकोच हुए, पर गीता जी कह तब कहीं करा। तो यो भगवान पहला भी असुरी और देवी प्रकृति रो संकेत करियो, नाम भी लियो नवे अध्याय में राक्षसी असुरी चेहवे प्रकृति मोहिनी मिश्रता, और महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजंती, वे मारो भजन करे है। तो बेटे हम तो अर्जुन जी कई बात ना पूछ ली, जन मारे जवाब देने में यूं अवसर को नहीं मिलियो भगवान ने, जन के अबे अवसर मिलियो है, जन भगवान 16वें अध्याय में विस्तार से पहला देवी संपत्ति रो वर्णन करे। देवी संपत्ति भगवान री संपत्ति, देवी प्रकृति भगवान रो स्वभाव, यूं कह दो स्वभाव देवी प्रकृति काई वह है कि अभयम सत्कर्षण शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय सप आर्जवम, के अभय निर्भय रहनो, जो अभय है वो देवी प्रकृति रूप गुण है, और सत्व संशुद्धि अंतकरण की शुद्धि भीतर की शुद्धि, और ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और दान देनो दम यानी इंद्रिया ने वश में करनो, यज्ञ करनो, स्वाध्याय करनो, स्वाध्याय में बतायो अर्थ में कि अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता भागवत रामायण महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वस्य अध्याय अध्ययनम स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों का अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति से कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति ही माननी है, कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती है, बदलती रहती है। तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें। वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए, और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। वो है स्वाध्याय और तपस्या। अपनो धर्म पालन करती टेम कोई कष्ट आ जावे तो प्रसन्नता सुसहन कर लेवे तो आ तपस्या होगी। और आर्जवम यानी सरलता, और अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैसुनम दया भूतेश्व लोलुपम माध्यम ही रचापलम। कि अहिंसा मन सु वचन सु शरीर सु किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, कई ने भी किंचन मात्र भी कष्ट वे ओ भाव भी नहीं रहा करो, कई ने दुख भी नहीं देना। अहिंसा आगे नहीं पहला 13वें अध्याय में बता दिया, अहिंसा रा 81 प्रकार रा भेद बताया। हिंसा वह 81 प्रकार री, बारो त्याग अहिंसा है। विस्तार देखना वह तो 13वें अध्याय रे 7वें श्लोक में देख लो। और सत्य जैसो सुनियो है समझियो है वैसो सरलता हूं वैसो को वैसो कह देवे ना कम न ज्यादा। और अक्रोध क्रोध नहीं करना, कई पर क्रोध आ जाए नहीं जनक बीरो अनिष्ट करने री इच्छा में एक वृत्ति पैदा हुए नहीं तो वो क्रोध नहीं होना, देवी प्रकृति रो लक्षण है वो। और त्याग और शांति और अपेसुन यानी पिसुनता कहवे चुगली करने में, तो ऐसी निंदा चुगली को नहीं करे देवी प्रकृति वालों। निंदा चुगली रो बड़ो पाप बतायो है रामायण में, तो सबसे बड़ो पाप बतायो पर निंदा सम अग्नि गरिष्ठा अग की पिसुनता सम किसु आना। तो अपेसुनम कई है इरी व्याख्या में लिखियो है, किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिसुनता है, और इसका सर्वथा अभाव ही अपेसुन है। परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता, ज्यों ज्यों उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है क्यों ही क्यों उसका उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और यह दूसरे साधन न करने वाले साधारण मनुष्य हैं। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति जड़ता से संबंध न होना दिखाई देती है, वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि संबंध माना हुआ है। वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है, और कर्म योग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई निंदा चुगली आदि कर ही कैसे सकता है। और क्या प्राणियों पर दया और कोमलता और लज्जा, लोक शास्त्र काम विरुद्ध काम करने में लज्जा और चंचलता रहित होना, उतावलापन नहीं होना, यह देवी प्रकृति का लक्षण है। और तेज तेज अर्थ लिखियो है कि महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु ये क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आ जाते हैं, अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन दैवी संपत्ति वालों का तेज है, प्रभाव है। और क्षमा माफ कर देना और धृति जितने रो अर्थ लिखियो है व्याख्या, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति धैर्य है। गीता के 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। और क्या शौच शुद्धि, पहला मनरी शुद्धि कह दी और अब शौच और आयो तो क्या बारली शुद्धि है। और कई सु द्रोह नहीं करे, गुस्सा नहीं करे, कई रे प्रति ऐसो वो बर्ताव नहीं करे कि बीरो गुरु वे, और अति मानता नहीं वे कि मैं पूज्य हूं, मैं बड़ो हूं, यूं जो मान चावे नहीं, तो बाके मान्यता है पण अपने सु बड़ा है, बाऊ भी मान चावे है, गुरुजना उसको भी कोई मान चावे तो के अति मानता है। देवी प्रकृति वाला में अति मानता को नहीं वे, तो ए दैवी प्रकृति रा गुण बताया। अब आगे आसुरी प्रकृति वाला है बता सी, आसुरी प्रकृति वाला गुण वे कि जका में दंभ वे दिखावटीपन, और दर्प वे घमंड वे, और अभिमान वे क्रोध, और कठोरता वे और अज्ञान भी वे, तो ए के आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य है। दोनों तरह की प्रकृतियां बता करके आरो फल बतायो कि ए जो अभी दैवी प्रकृति का गुण बताया है नी, ए गुण कोई धारण करे तो बारी मुक्ति हो जावे, क्योंकि आ दैवी प्रकृति मुक्ति वास्ते ही है। और आसुरी प्रकृति आसुरी संपत्ति आप बंधन वास्ते है। अर्जुन तू चिंता मत कर, हर में तो देवी प्रकृति है, के साधक ने पतो कौन लागे कि मार में देवी प्रकृति है कि नहीं, के सन चिंता कौन करने के। आगे भी भगवान कहो कि मारी शरण आ जा, सगला पाप मैं मिटा दू, चिंता मत कर, मां सोचे अटे भी मां सोचा, चिंता मत कर। इस संसार में दो ही तरह का प्राणी है, एक तो असुरी प्रकृति वाला और एक दैवी प्रकृति वाला। तो दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार से कह दिया, अब असुरी प्रकृति वाला अभी विस्तार से सुनो कि असुरी प्रकृति वाला वह नहीं, वह जाने को नहीं कि प्रवृत्ति कहीं वह निवृत्ति कहीं वह, काई काम करनो चाहिए, किसे काम में प्रवृत्त होना चाहिए और किसे काम से निवृत्त होना चाहिए, किसे काम ने छोड़नो चाहिए। ओ तो काम अच्छो है तो इमे प्रवृत्त वा, ओ काम बुरो है तो इन निवृत्त वा, तो इन जाने को नहीं बे। क्यों नहीं जाने कि एक तो कारण है कि वे जन्मे ही ऐसे ही घर में ऐसे ही माहौल में रहे बेचारा, जका असुरी प्रकृति वाला लोग है, बारे घर में कोई जन्मे तो बारे देवी प्रकृति है ही कौन, असुरी प्रकृति बटे है जन बड़े ही माहौल मिले, और दूसरो पहला रा कर्मारे अनुसार जन्म भी बटी हुए बारो, पहले जन्म में वे इमे ही लगोड़ा हा, बारे कर्मारे अनुसार ऐसे ही घर में ऐसे माहौल में वे रेवे पड़े, तो वे जाने कौन की किस तो काम ठीक है किस तो बे ठीक है, किसे में तो प्रवृत्ति होना है और किसे से निवृत्त होना है। और के न सोचम ना पिचाचार्यो न सत्यम ते सुविद्यते, के बाम सोच को नहीं वे, सोच यानी शोक चिंता वालों नहीं, सोच के वे शुद्धि ने, के शुद्धि अशुद्धि को नहीं बारे, के आज अशुद्ध है अशुद्ध है, और वहां में कह आचार भी कोनी वे, सदाचार भी कोनी वे, ये बड़ा है आरे साथ में आदर रो व्यवहार करार, ए छोटा है आरे पर स्नेह रखा तीरे साथ में कैसो व्यवहार करना चाहिए, वो सदाचार भी कोनी जाने। शुद्ध अशुद्धि तो आजकल के बहुत हो गया ऐसी, जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह देवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जनह पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने लायक है, क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है, पर वे तो इन्हें प्रकृति ने दबा दी। तो ऐसा मनुष्य शुद्ध अशुद्ध भी को नहीं जाने, सदाचार भी को नहीं जाने, और हमारा भाव भी ऐसा वह कि संसार में सच्ची चीज कोई है ही नहीं, संसार असत है, इन्हें कोई पैदा करने वाला है ही को नहीं, कोई ईश्वर है ही को नहीं। ऐ तो स्त्री पुरुष मिलिया जन पैदा हो गया है मनुष्य, यही है काम ही हेतु है, काम रे अलावा कोई इन पैदा करने वालों नहीं, संसार ने कोई बनाने वालों नहीं है, ईश्वर ईश्वर कहीं को नहीं, धर्म आदि रहे कहीं को नहीं। ऐडी दृष्टि ने लेकर के ही वह अल्प बुद्धि वाला बुद्धिहीन मनुष्य इन संसार में चले, और बारी जो उन्नति वे बा में जो शक्ति आवे बा शक्ति दूसरा री पीड़ा वास्ते, दूसरा ने दुख देने वास्ते है, संसार रो नुकसान करने वास्ते वैसा वे पैदा वे। और भी विस्तार से वर्णन करियो है, विस्तार से तब पढ़ना वे तो साधक संजीवनी पढ़नी चाहिए, इनमें कई बात आई है ऐसी, ऐसा सिद्धांत पकड़ ले अज्ञान सु जका उल्टा सिद्धांत है, जका लोगों रो नुकसान हुए अपनो भी नुकसान हुए, जका ऐसा हट पकड़िया रखे थे, मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं, तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, वे शास्त्रों की वेदों की वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते, प्रत्युत इनके विपरीत चलने में इनको भ्रष्ट करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं, अपना गौरव समझते हैं, वे अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानते हैं, उल्टी बुद्धि हो जाए भाई, ठीक ने बेठीक समझे, बेठीक ने ठीक समझे, और चिंता ऐसी वह मारी मिटी होनी मर जाए जब तई चिंता सयोटी रहे, और मारो निश्चय कहीं है कि भोग पदार्थ प्राप्त करो और भोग भोगो, बस इतो ही निश्चय है बार, और इन वास्ते भले ही झूठ कपट अन्याय करनो पड़े, धन धन मिल जानो सही है, चाहे अन्याय से मिलो पाप से मिलो, ऐसा भाव रहे बार, और कितनी आशा वे बंदियोड़ा रहे, काम क्रोध रे पारायण रहे, और मनोरथ कहीं करे कि आज चीज तो मैं प्राप्त कर ली, इतो तो मैंने मिल गया और मैं वो मनोरथ पूरा कर ले, इतो मारे तो आगे और मारे धन आ जाए, भी शत्रु ने तो मार दे और मार दे, मैं ईश्वर हूं, भोगी हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, सिद्ध हूं, यो अनेक तरह रे चित वो भ्रमित रहे, और भी मोह जाल सु समावृत वे समावृत रहे, जो अभी बताया है मोर है जाल। तो ऐसा जो मनुष्य वे अशुद्ध नरक में पड़े, कि नरक भी शुद्ध अशुद्ध वे कहीं के नरक में भी, नरक तो अशुद्ध ही वे तो दुख देना ही वे, पर बा में भी के ज्यादा दुख देने वाले बा नरक में पड़े बे लोग, तो वे लोग कैसा वे कि आत्मसंभाविता अपने नहीं बड़ो मानने वाला वे घमंडी वे धन और मान यड़ा भरियोड़ा रहे, और यज्ञ दान आदि भी करे बे, पर कैसा करे कि दम्भ सु करे, दिखावण वास्ते दिखावटी, कि मैं भी देखो यज्ञ करे ऐसा यज्ञ कर हाँ, देखो आज तक कोई नहीं करियो, देखा सगड़ा करे ने बारे ऊपर टांग फेर दे, वहां ऐसा यज्ञ कर हाँ दान दे, और वो यज्ञ भी कहे विधि पूर्वक नहीं करे, शास्त्र विधि के अनुसार करे, जना तो बात नहीं, और यो अहंकार मेर बल मेर दर्प मेर काम क्रोध में आम बे संजोड़ा ही रहे, तो बे कह भगवान कह रहे कि बे महसू द्वेष करने वाला है, भगवान अपने शरीर में वीर शरीर में भी भगवान रहे, असुरी प्रकृति वाला रहे शरीर में भी अंतर में भगवान रहे ही है, भगवान कह बे महसू भी बैर करे दूसरा सु भी बैर करे, भगवान सु बैर करनो का ही है, इम लिखियो है कि भगवान कह रहे कि वेद और स्मृति री जो आज्ञा है नी बा मारी आज्ञा है, और इन आज्ञा ने कोई नहीं माने तो वो आज्ञा भंगी है और महष्णु द्वेष करने वाला वो जरूर नरक में पड़ सके। वेदारी बात नहीं माने और धर्म ग्रंथ की बात नहीं माने, नहीं स्मृतियां बात नहीं माने, भगवान के हमारी आज्ञा है, वो आज्ञा जो नहीं माने तो वह जरूर नरक में पड़ती, वह महष्णु द्वेष करने वाला है और वह द्वेष करने वाला ने मैं कह अदम मनुष्य ने नरक में नाकू कह निरंतर असुरी दुनिया में बिन भेजू और फिर विष्णु भी नीचा के जन्म जन्म में असुरी दुनिया भुगतता रहे, सिंह सांप बिच्छु आदि, और फिर वैष्णव भी भयंकर नरक में जावे बे मारी प्राप्ति नहीं करके। कि महाराज ऐसा असुर स्वभाव वाला आपरी प्राप्ति कि एक बार बाने भी भगवान मनुष्य जन्म दे देवे, लक्ष चौरासी जून भुगत ली तो कह एक बार मनुष्य जन्म दे दे तो बाने भी मनुष्य शरीर मिल जावे, लेकिन वे मनुष्य शरीर मिलने पर भी वे असुर स्वभाव के कारण बिमिल लगोड़ा रहे, तो मारी प्राप्ति नहीं करे। मनुष्य शरीर मिल गया तो मारी प्राप्ति कर लेनी चाहिए नहीं, लेकिन वह करे कौन ये भगवान ने भी इरो अफसोस है। तो कहे मनुष्य शरीर में भी भगवान की प्राप्ति नहीं करके नरका में जावे, नरका में ले जावना है कौन है, मूल दोष बताया कि तीन नरक का दरवाजा है, काम क्रोध और लोभ। जको काम क्रोध लोभ रो सारो ले लेवे अरे अनुसार चालन लाग जावे वे नरक में जावे। तीन दरवाजा बताया नरक आऊ, अगर कोई छूट जावे काम क्रोध लोभ छू तो वो आप रे कल्याण रो आचरण करे, मुक्ति रो आचरण करे और वो परम गति प्राप्त कर लेवे। लेकिन अगर कोई मनमाना आचरण करे तो कभी ने सिद्धि को नहीं मिले। काम क्रोध लोभ आने शास्त्र नरकरा दरवाजा किया है तो के आरो त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार कोई चाल सी तो वो के परम गति पा लेसी, परमात्मा की प्राप्ति हो जासी, बीरी मुक्ति हो जासी। पर जो शास्त्र विधि ने नहीं माने है और अपने इच्छा से मनमानो आचरण करे है तो बिना न तो के सिद्धि मिले न सुख मिले न परम गति मिले। इन वास्ते अर्जुन कहीं करनो चाहिए और कहीं नहीं करनो चाहिए, ये बात में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में जो बात लिखी है वो बात तो करो, और शास्त्र जैसे बात वास्ते मना करियो है वो काम मत ही करो। यूं शास्त्र विधि ने जान करके काम करना चाहिए। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि महाराज सगला तो शास्त्र विधि ने को नहीं जाने, और शास्त्र विधि ने नहीं जाने वे तो नरक में जा सके। जका शास्त्र विधि तो जाने को नहीं पण बे श्रद्धा सू यजन पूजन करे है, बारी कहीं निष्ठा है, बारी कहीं गति उसी। जन भगवान कहे है कि श्रद्धा तीन तरह रिव्या करे, स्वभाव से पैदा हुई श्रद्धा, सात्विकी राजसी और तामसी, बारह भेद सुन। अभी जो सोलहवें अध्याय में शास्त्र विधि रो त्याग करियो बाने बताया है, अवहेलना सु शास्त्र री अवज्ञा करिए बे। शास्त्र कहे कि काम क्रोध आदि छोड़ करके शास्त्र रे आज्ञा रे अनुसार चालो तो बे चाले को नहीं, शास्त्र री अवहेलना करी है जन के बे नरकम जावे। पर अर्जुन जी पूछे कि जका शास्त्र विधि री अवहेलना को नहीं करी वे जाने को नहीं शास्त्र और वे पूजन आदि करे है तो वे किसा है, आसुरी प्रकृति वाला है या देवी प्रकृति वाला है। तो भगवान कहे वे तीन तरह रहे, जैसो मनुष्य वे वैसी बीरी स्थिति समझनी चाहिए। कोई सतोगुणी है तो वो सतोगुणी है, सतोगुण में प्रेम करने वालों सतोगुणी, और बीरी गति भी वैसी सात्विक गति उसी, तमोगुणी री रजोगुणी री गति वैसी उसी। सतोगुणी तो ऊपर जासी ऊपर के लोका में, तमोगुणी रजोगुणी नीचे जासी, ऐसी बारी गति उसी। तो क्या आरी पहचान किया वे कि सतोगुणी लोग वे नहीं जका देवता री पूजा करे, और रजोगुणी यक्षारी और राक्षसारी पूजा करे और तमोगुणी प्रेतारी और भूतारी पूजा करे कि कोई पूजा करे ही नहीं तो कहीं छा पड़े कि भोजन पतो लाग गया। अब के एक तो शास्त्र विधि री परवाह कोनी करे, अब हेलना कर दे और अपने मन सुचाले, वे तो आसुर लोक है नरका में जासी। और जो शास्त्र विधि री अवहेलना तो कोनी करी पर शास्त्र विधि जाने कोनी, तो वे यूं नरका में जाऊं जैसा तो कोनी, लेकिन बारी पिछाण आगे बताइए। और एक शास्त्र विधि रो त्याग करे है विरोध सु, तो बारी कहीं दशा है जको बतावे है कि जका शास्त्र विधि ने कोनी माने, वे शास्त्र के ने तो पढ़े है ने पढ़ना चाहे, जका पढ़े बाने भी कोनी माने, वे तो अपने नहीं समझदार समझे, गमंडू भरियोड़ा रहे, तो वे लोग अपने मन से तपस्या करे, बारी के तपस्या पर श्रद्धा वे और वे तपस्या काने समझे कि शरीर ने कष्ट देनो ही वे तपस्या समझे, जो शरीर ने बिना शास्त्र विधि रे अनुसार पंचाग्नि में तपावे, शरीर ने तपावे कोई उल्टा लटके है, कोई कांटा पर सुए है, ऐसा जो शरीर ने कष्ट दे करके जो तप करे नहीं, जो शास्त्र विधि रे अनुसार नहीं है वो तप करे, तो वे असुर निश्चय वाला है। वे क्यों करे ऐसा कि भोग पदार्थ में बारी आसक्ति है और वे मने मिलना चाहिए, ऐसा वारो दुराग्रह वे हट वे, और वीरे कारण वे ऐसी तपस्या करे और घमंड रे कारण ऐसी तपस्या करे कि हम भी कर सकते हैं, हम कोई कम थोड़ी है। तो वे लोग जो शास्त्र विधि री अवहेलना करके विरोध करके जो घमंड सु शरीर ने कष्ट देवे है, तो के और पांच तत्वों रो शरीर है नी पांच भूतारो, तो आ पांच भूता ने तो कृष्ण करे ही है, हमें भीतर में रहने वाला जो परमात्मा है बाने भी के कृष्ण करे, बाने भी दुख दे, भगवान कहे कि माम सेवा अंत शरीर स्थम तान विद्यासुर निश्चय, मने भी वे दुख देवे, अपने ने तो दुख देवे ही है, दूसरा ने भी देवे, भगवान ने दुख देवे कि भगवान ने दुख किया देवे कि शरीर है पांच तत्वों बनियोड़ा, तो भी शरीर में जीता जीव है, वे तो वे न्यारे न्यारे कोई तो भगवान री आज्ञा माने और कई कोनी माने, तो ए जो असुर लोग है इस शरीर में रहते हुए जो आर्य शरीर में भी परमात्मा है, तो ए परमात्मा री आज्ञा नहीं माने, शास्त्र विधि रे अनुसार कोनी चाले, शास्त्र रे प्रतिकूल चाले, तो आज्ञा नहीं मानने सु भगवान ने के कष्ट पे, इन वास्ते के मन भी दुख देने वाला है। माम सेवा अंत शरीरस्थम, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ट करते हैं, दुख देते हैं, कैसे, वे मेरी आज्ञा मेरे मत के अनुसार नहीं चलते प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं, ओ भगवान ने दुख देना है, तो क्या तपस्या ऐ नहीं करनी कि करनी, वे तपस्या करनी जबकि शास्त्र आज्ञा दी है, शास्त्र विधान रे अनुसार तपस्या करो, कष्ट कष्ट सहन नहीं करनो कि कष्ट सहन करे जगत तो आसुर है, कि कष्ट वो सहन करो कि अपनो कर्तव्य है, और भी कर्तव्य पालन करते समय कोई कष्ट आ गयो तो वो सहन कर लेवे, तो आ तपस्या ऊंची बताई है, अपने मन से शरीर ने कष्ट दियो तो के बाद तपस्या को नहीं बताओ, इन बतायो है। चौथे श्लोक में विशेष बात माया बात, चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धा युक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए यजंते पद आया है, परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करके त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यंते पद आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है, तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मन घड़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर मन इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि, ये सब आसुर निश्चय वालों के तप होते हैं। आजकल भी कई लोग अपने मन से ही तपस्या करने लगते हैं, मन से ही कई व्रत पकड़ ले, मन से ही ऐसा सिद्धांत कर ले, शरीर ने कष्ट देता रहे, अपने ने कष्ट देता रहे के तपस्या करे। दूसरा भी क्यों है तो बड़ा तपस्वी है, पर सोचना चाहिए कि वह शास्त्र आज्ञा अनुसार करे है या अपने मन से करे या कहीं देखा देखी करे। ऐसा लोग वे असुर तपस्या करने वाला बारे देखा देखी दूसरा भी करने लग जाए कि वह करे कि इन वास्ते मैं करा, अब वे शास्त्र विधि अनुसार करे इतनी कहीं था, वह बता समझ नहीं आवश्यकता है। ज्यादा विस्तार को नहीं करा तो अब पिछाण बताई कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी कैसा वे कि वे पूजन सु पिछाण हो जावे। तो कह कोई पूजन करे ही कोनी तो कि भोजन तो करे है, भोजन सु पिछाण हो जावे। कोई सात्विक भोजन करे तो वो सतोगुणी मनुष्य वे, और राजसी करे तो राजस मनुष्य, तामसी भोजन करे तो वे तमोगुणी मनुष्य, और ऐसी बारी गति उसी। अब भोजन रा है इन्हें पदार्थ भी बताया है और इन बताई की बारी रुचि सु पतो लागे, और भोजन रो आगे विस्तार थोड़ा सो करियो, वो थोड़ा सुना दें आवश्यक है कि भोजन के लिए आवश्यक विचार। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मन है, छांदोग्य उपनिषद 6.5.4। अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन अंतःकरण बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि, और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन अंतःकरण शुद्ध होता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद 2.6.2। स्वामी जी महाराज जी एक पुस्तक भी है छोटी, आहार शुद्धि, वह भी पढ़नी चाहिए। इनमें भी यूं विस्तार से विचार करियो तो इनमें और भी है संक्षेप के, भोजन जटे बैठ करके करे बा जगह भी शुद्ध होनी चाहिए, वायुमंडल भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भी टाइम भोजन करे जबकि टाइम प्राण वो खींचे, भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोम कूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। आप देखा कि आप भोजन करा जाना मुख में भोजन जावे वही वो अन्न शरीर में जावे कि इतो मुख आड़ो ही नहीं रोम रोम से वो खींचे, भोजन करे थे कि टाइम पे प्राण खींचे। तो अगर शुद्ध वातावरण नहीं हो नहीं हुई हो बटे तो अशुद्ध वातावरण हुई तो वो खींच ले सी प्राण और बीरो फिर परिणाम मिल सके। इन वास्ते वायुमंडल एक शुद्ध होना चाहिए, और के भोजन करियो पहला हाथ पैर और मुख पांचों शुद्ध कर लेना चाहिए, पवित्र जल से धो लेना चाहिए, फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ करके भोजन की सब चीजों को भगवान के अर्पण करके खाना चाहिए। के पहला अर्पण करने रो मंत्र बताये, गीता जी रे 9वें अध्याय रो 26वां श्लोक करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्युपिहते मस्नामी प्रियत आत्मन है, यूं और श्लोक बोल करके भगवान रे अर्पण करना चाहिए। और बाद में कि जीव ने हाथ में जल लेकर के ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म हैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता जी ने 4 अध्याय 24वां श्लोक है, तो और श्लोक पढ़ करके फिर आसमन करना चाहिए। और भोजन रो पहलो ग्रास लेवे तो भगवान रो नाम लेकर के ही मुख में वो ग्रास लेना चाहिए। और भोजन करे जना कि भगवान रो नाम लेता लेता भोजन करना चाहिए, के हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और 16 मंत्र है नी, तो एक बार वो मंत्र बोल दियो तो 16 नाम आ गया भगवान रा। और 2 बार मंत्र बोल दियो ओ, एक ग्रास लियो और 2 बार मंत्र बोल दियो तो भगवान रा 32 नाम आ गया, 32 ही दांत है मुंडे में। तो इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाए और निगले, इस मंत्र में कुल 16 नाम है और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं, हमारे मुख में भी 32 ही दांत होते हैं, अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है और थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। ये तो एक छोरो बता दी और कितनी अटकल बता दी, भोजन करते करते कि भोजन करो कि भजन करो कि भजन करा, क्या कोई भगवान रो नाम लेता लेता भोजन करे तो भी रो वो अन्न दोष भी मिट जाए। कवले कवले कुर्वन राम नामानु कीर्तनम यह कश्चित पुरुषोस नाति सोन्न दोषेर ने लिप्यति, कि जो कवे कवे में राम राम करे है तो वो पुरुष भी के अन्न रे दोष लिप्त को नहीं वे, नहीं तो अन्न रा दोष वे नी बाऊ बहुत परिणाम वे। तो राम राम करता अगर कोई यूं भोजन करे तो अन्न रो दोष मिट जावे। और के ए जकी टेम ए ईर्ष्या भय क्रोध आदि एवनी भी टेम भोजन नहीं करना, आयुर्वेद कहे ऐसा कोई विकार आ जाए भी टेम भोजन करे तो भोजन सही पाचन को नहीं रहे। मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे, यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन नहीं करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। अगर ए वृत्तियां आगिर बीटे भोजन करती तो वो अंत्यकरण पर असर पड़ी और फिर वो वैश्व बन सी। के ए फौजी लोग वे नी जका गाय दुवे जना बछड़ो छोड़े जना गाय पाउस जावे जन दूध दूध लेवे के वो दूध सगड़ो नहीं दूनो बछड़ो ढाप जावे बछड़ो दूध दुवे जना वो दूध शुद्ध है नहीं तो वो अशुद्ध है, वो अशुद्धि पैदा कर सकती है परिणाम अशुद्धि उसी पाप उसी। तो कहते फौजी लोग दूध दुवे जना गाय रे सामने कुत्तो छोड़ देवे जना गाय ने रीस आ जाओ मारे बछड़े रो नुकसान नहीं कर देवे, तो भी रीस रे समय बे गाय ने दुवे और वो दूध पिए जना बे फौजी भी वैसा ही रीस वाला वे ऐसा देखा कि मैं भी जोश वाला पूछा कि भी दूध रो वैसे ही असर पड़े। ऐसी परीक्षा करी कई लोग गायों रो दूध पिलायो घोड़ा ने और कई भैंसा रो दूध पिलायो, गाय रो दूध सात्विक वे तो जका घोड़ा ने गाय रो दूध पिलायो हो आगे के पानी आयो तो बे तो आप रे पानी ने पार कर गया, और जका घोड़ा ने भैंसा रो दूध पिलायो हो बे घोड़ा भी पानी में बैठ गया भैंस बैठे जा। यूं के अंदरों वो असर पड़े प्राणी पर भी जो मनुष्य पड़े वृत्तियां पर भी असर पड़े। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की दृष्टि अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। कोई बुरा आदमी आ गया भोजन करे बुरा आदमी आ गया बिरी दृष्टि पड़ गई तो वो भोजन बुरा हो गयो। कोई कुत्तो आ गयो भूखो है कुत्तो बिरी दृष्टि पड़ गई तो वो भोजन अपवित्र हो गयो। तो क्या अब कुत्तो तो आ जाओ अब कहीं करन वो देख ले जन बस भोजन छोड़ दे क्या शुद्ध किया मैं तो शुद्ध करने का उपाय बताया मैं। कि भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे। यो नहीं कि कुत्तियों कटा आयो भोजन रात दृष्टि घेर दे अब वो भोजन अपवित्र हो गया छोड़ना पड़ से यो रिश्ता नहीं बढ़ना कुत्ते माते के प्रसन्न हो जाओ कि भगवान आया है कुत्तों बन करके। तो उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन कराना, उसके बाद उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टि दोष मिट जाने से वे अन्न पवित्र हो जाता है तो फिर वो अन्न शुद्ध हो जाता है। भगवान ने भोजन कराया जैसे एक प्रकार से तो अन्न वो प्रसादित हो गया। यूं ही कहे भोजन कराने वाले वे बारो भाव वे भी भावरो भी असर पड़े कि भोजन कराने वाले की अपेक्षा भोजन भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वे भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। और तो उत्तम दर्जे रो बेहू मध्यम दर्जे रो भोजन किस तो है कि भोजन कराने वालों तो के बड़ी प्रसन्नता से करा रियो है पर वो करण नालों के ठीक है मुफ्त में भोजन मिल गया और इतना पैसा बच गया और भोजन बड़ आश्चर्य से यू स्वार्थ से करे तो वो भोजन के मध्यम दर्जे रो गयो। और भोजन करने वालों आ गयो तो क्या भोजन तो कराना ही पड़ सी हो आ गयो जाना घर पर आ गया तो खर्चा करना ही पड़ेगा भोजन बनाना ही पड़ेगा भोजन तो एड़ो भाव आवे अगर कराने वाले में तो वो भोजन तीसरे नंबर हो गयो निकृष्ट हो गयो स्वार्थ भाव आ गयो। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है सर्वभूत हिते रहता तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उसके पदार्थ क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। तो यूं भोजन करे शुद्धता से पवित्र भोजन करके फिर भोजन रे अंत में ए दो श्लोक बोले गीता जी रे तीसरे अध्याय रा 14-15 श्लोक अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ है कर्म समुद्भव है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम ए दो श्लोक बोल करके आत्मन करने के बाद में ए दो श्लोक पढ़ना चाहिए। फिर कहे भोजन पचने वास्ते भोजन पचने वास्ते वो श्लोक बताइए हम वैश्वान रो भूत अभी 15 श्लोक 15वें अध्याय 14वें श्लोक आयो ना एम वेस्ट अंदर भूतवा तो और श्लोक पढ़ करके आ मध्यम अंगुली नाभि पर घुमानी चाहिए मध्यम आ बीसली अंगुली आ नाभि पर सुंडी पर घुमावे जन के भोजन रो पाचन हो जाए। धीरे धीरे श्लोक पढ़ते हुए मध्यम अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए इन आंगली इन सुंडी ने धीरे धीरे घुमावे जन के वो भोजन पच्य तो भोजन शुद्ध करियो और शुद्ध चाशु करियो और वो पाचन भी उग्यो तो फिर परिणाम भी बढ़िया हो सके। आज तो टाइम उग्यो कल देख सीताराम सीताराम।